وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سواری کرنے کے بعد حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ ڈالا اور اس میں راز یہ تھا کہ پیچھے ایک دشمن آ رہا تھا بادشاہ جو ہر اچھی کشتی کو لے لیتا تھا یہ واقعہ تفصیل سے گزشتہ مجلس میں ہو چکا ہے دوسری ایک راز کی بات یہ تھی کہ اس کشتی سے اترنے کے بعد جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام چلنے لگے ایک جگہ پر چند معصوم بچے کھیل رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس بچے کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ آپ نے اس معصوم بچے کو کیوں قتل کر دیا تو اس معصوم بچے کا جو قتل ہوا اس کی حقیقت یہاں پر بتلائی جا رہی ہے یہ بچہ جو تھا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام حیثوم بتلایا ہے اپنے ماں باپ کا ایک بیٹا تھا بڑا چہیتا تھا بڑا پیارا بیٹا تھا ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے تو اولاد کے خاطر ماں باپ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کا دل خوش کرنے کے لیے نہ کرنے کے کام بھی ماں باپ کر ڈالتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد خوش رہے رہے اس لیے ایک کام جو شریعت میں ناجائز ہے شریعت کی نظر میں گناہ ہے لیکن محض اپنی اولاد کے خاطر لوگ کر ڈالتے ہیں اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہم نے شریعت کا قانون توڑ دیا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اولاد آگے چل کر کے ماں باپ کی بھی نافرمان بن جاتی ہے پھر ماں باپ اس کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا بچپن میں تھا تو اس کے خاطر اس کو راضی کرنے کے خاطر اس کو خوش کرنے کے خاطر ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے بہت سے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی فلانی ویڈیو رکھی ہوئی ہے کیوں ویڈیو رکھا ہے پتا ہم تو نہیں دیکھتے یہ بچے نہیں مانتے اس لیے رکھنا پڑتا ہے हम नहीं देखते, बच्चे नहीं मानते, इसलिए रखना पड़ता है। अब ये बच्चों के खातिर आदमी अल्लाह का हुक्म तोड़े, शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, तो जिस बच्चे के खातिर आदमी ने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, वो बच्चा आगे चल कर के माँ बाप का भी नाफरमान बनता है। आम तौर पर आप देख लीजिए माशरे के अंदर। दूसरी एक बात अहम समझ लो, वो ये कि हदीस शरीफ में आता है कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि औ युमज्जिसानिहि औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर बच्चा जो माँ के पेट से पैदा होता है वो कुदरती तौर पर इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे मुसलमान के घर में पैदा होवे, चाहे काफिर के घर में पैदा होवे, चाहे यहूदी के घर में पैदा होवे, चाहे नसरानी के घर में पैदा होवे, चाहे मजूसी के घर में पैदा होवे, किसी के घर में भी पैदा होवे, जो बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। इसी वजह से बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि काफिरों मुशरिकों की नाबालिग औलाद, जो बालिग नहीं हुए तो मर जाते हैं, तो जो काफिर की औलाद बालिग होने से पहले मर गई उनको जहन्नम की सज़ा नहीं होगी, वो जहन्नम में भी नहीं डाले जाएंगे बल्कि जन्नत में जन्नतियों की खिदमत करेंगे। इससे मालूम हुआ कि हर बच्चा पैदाइशी तौर पर इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, उसमें इस्लामी फितरत होती है। फिर हदीस में है कि आगे चल कर के उसको माँ बाप का, ख़ानदान का, रिश्तेदारों का जो माहौल मिला वो माहौल यहूदी वाला मिला, तो बच्चा भी यहूदी बन जाता है। उस बच्चे को माहौल नसरानी वाला मिला तो बच्चा भी ईसाई बन जाता है। उस बच्चे को माहौल मजूसी और फारसी वाला मिला तो वो बच्चा भी फारसी बन जाता है। जहाँ माँ बाप चलते हैं वहाँ बच्चा चलता है। तो पैदाइशी तौर पर हर बच्चा इस्लामी दीनी फितरत पर अल्लाह की तरफ से पैदा किया जाता है। फिर जब उसको माहौल मिलता है तो जैसा माहौल वैसा वो बनता है। और ये भी देखने में आया कि जब बच्चा छोटा होता है तो बचपन ही से दूर अंदेश लोगों को खुदा ताला ने जो नूरानी बसीरत दी है, नूरानी समझ दी है, उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद कैसा बनेगा। बचपन से एक अंदाज़ा हो जाता है। चुनांचे अल्लामा इब्न कय्यिम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब निशानी लिखी है, तो आप भी अपने बच्चों में देख लीजिए कि जब ये बच्चे खेलते हैं, टीम बनाते हैं आपस में, तो जब बच्चे खेलते हैं और टीम बनाते हैं तो कोई बच्चा यूं बोलता है कि मैं किसके साथ, मैं किसके साथ, मैं किसकी टीम में, और कोई बच्चा यूं बोलता है मेरी टीम में कौन कौन, मेरी टीम में कौन कौन, ऐसा बच्चे बोलते हैं। बाज़ ये बोलते हैं, बाज़ वो बोलते हैं। तो अल्लामा इब्न कय्यिम फरमाते हैं कि जो बच्चा अपनी ज़बान से बचपन में यूं बोले कि मेरी टीम में कौन कौन, मेरे साथ कौन कौन, तो समझ लेना वो बच्चा बड़ा होके लीडर बनेगा। उसमें लीडरशिप का मिजाज आएगा, अमीर बनेगा, जिम्मेदार बनेगा, उसमें अमारत, जिम्मेदारी, लीडरशिप ये उसमें आएगी। और जो बच्चा यूं बोलता हो कि मैं किसके साथ, तो वो पीछे चलने वाला बनेगा, पब्लिक में से बनेगा। ये अजीब निशानी लिखी इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर एक और बात लिखी बच्चों के मुताल्लिक, कि आप बच्चे जब बातचीत करते हैं तो आप देखना कभी कि एक बच्चा घर में से स्वीट लेकर के आया है, अब दूसरे बच्चा उसके मुंह को देख रहा है कि ये स्वीट लेकर आया है, तो पहले तो वो बगैर बोले हुए उसका मुंह देख रहा है। ये बगैर बोले हुए सवाल है, उसका मुंह देख रहा है, मतलब ये है कि थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। ये सवाल का पहला स्टेज हो गया। फिर उसने देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ ध्यान से, फिर भी नहीं देता, तो वो साफ लोगों पूछता है, भाई क्या खा रहा है तू? ये नहीं कहेगा मुझे दो, यूँ पूछेगा क्या खा रहा है। इसका मीनिंग ये होता है कि मुझे दो, इसलिए पूछा है क्या खा रहा है। फिर वो बच्चे ने देखा कि मैंने सवाल किया कि क्या खा रहा है, फिर भी मेरा हिस्सा देता नहीं है, तो अब साफ लफ्जों में वो कहता है मुझे भी दे। ये तीसरा नंबर। देखो पहले नंबर पर उसने मुंह देखा, दूसरे नंबर पर पूछा क्या खा रहा है, तीसरे नंबर पर मुझे भी देनी, फिर भी देखा कि ये देता ही नहीं, तो चौथे नंबर पर क्या कहेगा, मैंने उस दिन तुझे दिया था ने, अपना पुराना एहसान याद दिलाएगा, यानी अब तू मेरे ऊपर एहसान कर, ये चौथा दर्जा। फिर भी नहीं दिया तो पांचवें नंबर पर कहेगा तेरी भी बारी आएगी। देखो पांच मरहले, आप गौर करो बच्चों की बातचीत के ऊपर, सारे मराहिल अल्लाह ने उनमें कैसे रखे हैं, उनकी तबीयत में, उनकी फितरत में। उससे हमारी समझ में आता है कि बच्चे का मुस्तकबिल, बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का भविष्य किस अंदाज से होगा। तो जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसकी चाल ढाल, उसकी बातचीत वगैरह से अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, इसका अंदाज़ा हो जाता है। अब ये जो छोटा सा बच्चा खेल रहा था, अल्लाह ताला ने उस बच्चे की हालत को देख करके हज़रत खज़ीर अलैहि सलाम पर कश्फ फरमाया, इंकिशाफ फरमाया कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद शरीर बनेगा, तूफानी बनेगा, बदमाश बनेगा, यहाँ तक के काफिर बनेगा बड़ा होकर के। ये उस बच्चे से हजरत खजीर अलैह सलाम को मालूम हो गया है और अल्लाह ने उनको बतला दिया कि ये बच्चा बड़ा होकर काफिर बनेगा, शरीर बनेगा, तूफानी बनेगा, बदमाश बनेगा। और ये बच्चा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके माँ बाप को इससे बड़ी मोहब्बत है, तो माँ बाप भी बेटे की मोहब्बत में काफिर बन जाएंगे। अभी तो माँ बाप दीनदार है, मुसलमान है, लेकिन माँ बाप को बेटे से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत, बेटा जो कहता है माँ बाप करते हैं। तो बेटे की मोहब्बत के अंदर बेटा जब काफिर बनेगा तो बेटे के कहने पर माँ बाप भी काफिर बन जाएंगे। ये हजरत खज़ीर अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बतला दिया है, लिहाजा अल्लाह का हुक्म हो गया कि इस बच्चे को ही कत्ल कर डालो, ताकि बचपन में कत्ल हो जाए तो बड़ा होके काफिर न बने और उसके माँ बाप को भी काफिर न बनावे, इसलिए हजरत ने इसको बचपन में ही कत्ल कर डाला। इससे मालूम हुआ कि बहुत सारी चीज़ें तकदीर में हमारे मुतालिक जो अल्लाह के यहाँ लिखी हुई होती है वो ज़ाहिर में हमको ऐसा लगता है कि बुरी है, लेकिन हकीकत के अंदर उसमें भलाई है, खैर होती है उसमें। और हमारा ईमान तो तकदीर पर है। वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाही ताला। तकदीर अच्छी हो कि बुरी हो, अल्लाह ताला की तरफ से, ये हमारा ईमान है। तो उस बच्चे को हजरत खजीर अलैहि सलाम ने जो बचपन के अंदर कत्ल कर दिया, तो उसमें अल्लाह ताला ने उनको बता दिया था कि ये बच्चा बड़ा हो के काफिर बनेगा, काफिर बनने के बाद अपने माँ बाप को भी काफिर बनाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि उसको बचपन में कत्ल कर दो, ताकि बड़ा भी ना होवे, काफिर भी बना बने, माँ बाप को भी ना बनावे। कहते हैं कि जब उस बच्चे का कत्ल कर दिया हजरत खजीर अलैहि सलाम ने, तो उसके माँ बाप को बड़ा गम हुआ, बहुत रंज हुआ कि हमारा एक का एक बेटा था, वो बेटा भी कत्ल हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बदले में एक दूसरी नेमत अता फरमाई, वो आगे वाली आयत में है। फअरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने ये इंतज़ाम फरमाया है कि उस बच्चे को तो हजरत खजीर को हुक्म दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन उस मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने बाद में चल कर के एक बेटी अता फरमाई। पहले लड़का था, कत्ल कर दिया गया, अब दूसरी मरतबा में अल्लाह ताला ने उनके यहाँ एक बेटी अता फरमाई, और वो बेटी ऐसी बेटी बनी कि अल्लाह के एक नबी के साथ उसका निकाह हुआ। बेटी का निकाह नबी से हुआ, और उस बेटी के पेट से एक लड़का पैदा हुआ, और वो लड़का आगे चल कर के अल्लाह का नबी बना। कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी, एक बच्चा जो कत्ल करवा दिया गया उसके बदले में बेटी दी जो नबी के निकाह में गई, और उस बेटी से जो बेटा हुआ वो भी अल्लाह का नबी बना। तो दामाद भी पैगंबर और पोता भी पैगंबर, कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं कि हम ये चाहते थे कि उस लड़की के बदले में एक साफ सुथरी औलाद देवे, नबी साफ सुथरे होते हैं, और ऐसी औलाद देवे जो माँ बाप के साथ बड़ी शफकत करने वाले हो, बड़ी मोहब्बत करने वाले हो, बड़ा प्यार करने वाले हो, ऐसी औलाद हमने अता फरमाई। तो अल्लाह ताला के कारखाने में, अल्लाह के निज़ाम में एक चीज़ हमको बाहर से बुरी मालूम होती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसमें कितनी भलाइयाँ छुपी हुई होती है। وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِلْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا। अब जो तीसरा वाकिया था, तीसरा वाकिया ये था कि हजरत मूसा और खजीर अलैहि सलाम चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे, इंताकिया शहर में गालिबन पहुंचे। वहाँ जब पहुँचे तो परदेसी मुसाफिर थे ये दोनों, दोनों अल्लाह के नबी, दोनों का चेहरा नूरानी और मासूम, और परदेश से सफ़र करके आए। ऐसे भी परदेसी मुसाफिरों को खिलाना चाहिए, उनकी नुसरत करनी चाहिए। लेकिन ये परदेसी मुसाफिर तो अल्लाह के नबी पैगंबर अल्लाह के, तो उनकी और खिदमत करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने, दोनों नबियों ने वहां जाकर के लोगों से कहा, भाई हम परदेसी मुसाफिर है, हमको खाना खिलाओ। उसके बावजूद भी लोगों ने खाना नहीं खिलाया, साफ लफ्जों में मुंह पे इनकार कर दिया, हम तुमको खाना नहीं खिलाते। साफ लफ्जों ने मना कर दिया अल्लाह के नबी को। अब दोनों अल्लाह के नबी शहर में चल रहे थे, एक दीवार देखी, वो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, ऐसी अभी गिरे अभी गिरे, अभी टूट पड़े अभी टूट पड़े। हजरत खजीर अलैहिस सलाम ने एक सहारा दिया और दीवार को सीधा कर दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस सलाम से सबर नहीं हुआ और फरमाने लगे कि खजीर, इस शहर के लोगों से हमने खाना मांगा फिर भी नहीं खिलाया, और आपने इनकी दीवार को मुफ्त में ठीक कर दिया। आपको अगर दीवार ठीक करनी थी तो लोगों को यूं कहते कि भाई खाना खिलाओ, दो चार रुपये दो तो हम दीवार ठीक कर देते हैं, अपना भी पेट भर जाता, इनका भी काम बन जाता। एक तो भूख लगी है, शहर वाले खाना नहीं खिलाते, और आपने मुफ्त में दीवार ठीक कर दी। तो उस पर हजरत खजीर अलैहि सलाम ने इसका राज बताया कि मैंने मुफ्त में दीवार क्यों ठीक कर दी। का जहां दीवार है, उस दीवार के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है, सोने का खजाना, सोना है उसमें। और वो सोने का खजाना यतीम लड़कों का है। यतीमैन फिल मदीना, इस शहर में दो यतीम बच्चे रहते हैं, उनका बाप उनको यतीम छोड़ के मर गया, और अपने बेटे को मुस्तकबिल में, भविष्य में काम आवे, इसके लिए सोना जमीन में दफन कर गया है। उस जमाने में बैंक तो थे नहीं, लोग जमीनों में दफन करते थे खजाना, और जहां खजाना दफन किया था उसके ऊपर दीवार बना दी, ताकि किसी को शक नहीं होए कि यहाँ खजाना है, और कोई खोद के भी ना ले जा रहे, इसलिए ऊपर दीवार बना दी। और अपने खास आदमी को बता दिया कि देखो ये दीवार के नीचे खजाना है, मेरे यतीम बच्चे जब जवान होए तब तुम उसको निकाल के दे देना, मैं तो मर रहा हूं, उस मरने वाले नहीं हूं का, मेरी मौत करीब है, लेकिन मेरे यतीम बच्चों को काम आवे इसके लिए सोना मैंने यहां दफन किया है। अब जिसको बतलाया था वो आदमी कहीं सफर में चला गया, और ये दीवार टेढ़ी हो गई, अभी टूटने वाली थी। जो टूट जाती दीवार तो खजाना खुल के सामने आ जाता और लोग लूट के ले जाते और यतीम बच्चों का माल खत्म हो जाता। तो अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि इस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का माल है, लिहाजा मैंने यतीम की खैर ख्वाही में मुफ्त में बिना किसी पैसे लिए हुए इस दीवार को ठीक कर दिया है, ताकि यतीमों का माल बच जाए। और ये नबी के अखलाक है, नबवी अखलाक यही है कि लोगों की खिदमत करो बगैर किसी बदले की उम्मीद के, कोई बदले की उम्मीद नहीं, बदले की उम्मीद रखे बगैर लोगों की खिदमत करो, ये अल्लाह के नबियों का तरीका है। आज दुनिया में खिदमत तो करते हैं, बहुत सी खिदमत करने वाली जमातें भी है, कमेटियां भी है, सोसाइटियां भी है, संस्थाएं बहुत है, लेकिन सबके अलग अलग मकसद। अखबार में हमारा नाम छपे, हमारी शानदार रिपोर्ट छपे, लोग हमारी वाह वाह करे, फलानी रिलीफ कमेटी ने यूं काम किया, यूं काम किया, ऐसा काम किया, ये सब गंदे मकासिद होते हैं। किसी की भी खिदमत करो इस जज्बे से खिदमत करो कि वो हमको बदला देवे के ना देवे अल्लाह राजी हो जावे, इसके लिए हमें खिदमत करनी है। और ये नबी का तरीका है। कुरान में अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तो तुमको खाना खिलाते हैं अल्लाह को राजी करने के वास्ते कि अल्लाह राजी हो जावे, हम तुमसे बदला भी नहीं मांगते, शुक्रिया भी नहीं मांगते अल्लाह के वास्ते। तो अल्लाह वास्ते खिदमत करने वाले बनो तो इंशाल्लाह वो खिदमत अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएंगे। कब मैंने यतीम बच्चों का माल संभालने के लिए मुफ्त में दीवार ठीक कर दी ताकि यतीम बच्चों का माल बच जावे और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये तीनों वाकये की हकीकत हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दी और बताने के बाद फरमाया कि मूसा जाओ तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। हमने शर्त लगाई थी कि बोलना नहीं और तुम तो बोलते रहे, इसीलिए अब हम तुमको हमारे साथ रहने नहीं देंगे। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश के मूसा अलैहिस्सलाम और चुप रहते तो हमको कुछ और राज की बातें जानने को मिलती। मूसा अलैहिस्सलाम अगर चुप रहते तो और भी बहुत सारी राज की बातें जानने को मिलती, लेकिन तीन मरतबा हो गया, शर्त पूरी हो गई, लिहाजा हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जाओ अब तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। और ये भी अल्लाह की तरफ से एक तकदीरी बात थी। हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने यूँ फरमा दिया, वमा फालतुहु अन अमरी, ये जितने काम किए मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए, अल्लाह के हुक्म से किए थे और उसकी हकीकत उसका राज मैंने आपको आपके सामने बतला दिया है। अब यहाँ एक छोटा सा मसला बाकी रह जाता है कि क्या हजरत खजीर अलैहिस्सलाम जिंदा है आज तक? एक नाजुक मसला है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हजरत खजीर अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा है और लोगों की मदद करने आते हैं और उस पर लोग किस्से भी बयान करते हैं, बहुत सारे वाकयात। हमारे यहाँ जामिया डाढ़ेल में आज से 60-70 साल पहले जब हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बड़े बड़े अकाबरीन जब पढ़ाते थे, उस दौर में ईरान, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, रशिया, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने आते थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं, लोग पैदल आते थे, ट्रेनों में आते थे, लंबा लंबा सफ़र करके। तो ईरान से पढ़ने आए थे तलबा हमारे यहाँ डाले उस ज़माने में पैदल चलते हुए। उसमें बाद में फिर बहुत मशहूर बुज़ुर्ग बने मौलाना अब्दुल समद साहब ईरानी रहमतुल्लाह अलैह। वो जब आ रहे थे तो जंगल में रास्ता भटक गए, तो उनके मुतालिक भी सुना है हमने कि हज़रत खजीर अलैहिस्सलाम ने आकर के उनको जंगल में रास्ता बतलाया है। ऐसे बाद हदीस में ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो गई तो एक आदमी सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद कपड़े वाले, नूरानी शक्ल वाले सहाबा के मजमे को चीरते हुए आए और हुजूर के पास पहुंच गए और बहुत रोए, कुछ कलिमात उन्होंने पढ़े और फिर वो निकल के चले गए। बाद में पता चला کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے. اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے بزرگوں میں سے. حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے حیات خضر کے نام سے. اور بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت زمین پر زندہ ہے آج سے 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا. ایک حدیث میں یہ مضمون بھی موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. تو اس سلسلے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے. حضرت نے ایک مرتبہ کشف کے عالم میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی کشف کی حالت میں, اور پوچھا کہ حضرت لوگ دنیا میں بحث کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ آپ زندہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ مر گئے ہیں, حقیقت کیا ہے وہ بتاؤ. تو خود حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ مجھے اور حضرت الیاس علیہ السلام کو, یعنی حضرت خضر کو اور حضرت الیاس کو, ہم دونوں کی موت تو ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ ہم دنیا میں آ کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو قدرت عطا فرمائی ہے. اس لیے کبھی کوئی ڈوبتا ہو, کبھی کوئی جنگل میں بھٹک گیا ہو, تو کہا ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آ کر کے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. یہ بات بہت اچھی معلوم ہوئی جب ہم نے پڑھی تو, کہ بھائی وفات تو ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ اللہ جہاں چاہتے ہیں وہاں آ کر کے یہ دونوں مدد کر دیتے ہیں. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس جگہ کے اوپر مکمل ہوا.